آج کل جو ہے سننے کے لیے تو بہت ہی باتیں مل جاتی ہے، کیونکہ ان کو سن کر کے کام میں نہیں لیاوے تو اس کا وشیش لابھ نہیں ہوتا. ان باتوں کو کام میں لانے کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے. سننے کی اپیکشا کام میں لانے میں ادھک دلچسپی رکھنی چاہیے. سنسار کے جتنے جو بھوگ ہیں، اندروں کے دوارا جو ہم سنسار کے جو بھوگ بھوگتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو بڑا بھاری نقصان ہوتا ہے. رشیوں کا جو بھوگ ہے وہ پنیوں کا پھل ہے. ایک تو پیچھے بھوگ بھوگنے سے اپنے پنیہ جو ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے شبد سبر سروپ رس گم، یہ جو سنسار کے جو وشے ان کو ہم بھوگتے ہیں اس سے آسکتی بڑھتی ہے. بھوگوں کے بھوگنے سے ہی آسکتی بڑھتی ہے. تیسری بات یہ ہے بھوگوں کے بھوگنے کا جو پرینام ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی بھوجن کرتے ہیں سواد کی درشٹی سے تھی تو ہمارے کو تھوڑا سا سکھ ملا اس میں سے، کنتو اس کا جو نتیجہ جو ہوتا ہے ادھیاتم وشے کے بیچ کے ماں ہم لوگوں کا بڑا بھاری پتن ہو جاتا ہے. جیسے کوئی ہماری بڑائی کری اور بڑائی سننے سے اہنکار بڑھیا تو یہ بڑا بھاری روگ بڑھ گیا. ہمارے لابھ تو بہت معمولی ہوا، تھوڑی بار کے لیے کھانے کے لیے پسندتا ہو گئی اور بڑائی تو ملے گا. اسی طرح سے بھی ہمارا کوئی ستکار کرا پوجا کری تو اس سے ابھیمان بڑھ گیا. ہمارے کو سکھ تو بہت معمولی ملا اور ہمارے روگ بڑا بھاری بڑھ گیا. اس پرکار کے وشیوں کے بھوگنے سے گن تو کھڑے ہوتا ہے اور اوگن بڑھتے ہیں. اور اس میں وشیوں میں آسکتی بڑھتی ہے، پھر وشیوں کو پراپت کر کے دیتے ہیں اور اس میں اچھا ہوتی ہے وشے بھوگنے کی. اور وہ جو اچھا ہے کامنا اس سے ہمارا پتن ہو جاتا ہے. پرماتما کے پیچھے کی جو اچھا ہے وہ تو بڑی اتم ہے، جو کہ بھائی جی نے ابھی آپ کو سنائی. کنتو پرماتما کو چھوڑ کر کے بھوگا کی جو اچھا بڑھتی ہے وہ ہمارے لیے گھاتک ہوتی ہے، بلکہ پرماتما کی اچھا میں رکاوٹ ڈالتی ہوں. سنسار کے پیچھے بھوگوں کا جو سکھ ہے یہ پرتکش دکھتا ہے، دیکھنے میں پرتکش آتا ہے. بھگوان سے ملنے کا جو سکھ ہے وہ تو ایک پرکار سے وشواس پر نربھر کرتا ہے. شاستر اور مہاپرشوں کے بچنوں کے اوپر وشواس ہونے سے وہ بات تو ہے صحیح، کنتو سزا کی بات ہے. سنسارک جو بھوگ ہے یہ پرتکش دکھتا ہے تو اس میں یہ جیو پھنس جاتا ہے اور پھر پرنام میں اس کی دوگتی ہوتی ہے. ان سے باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے سنسار کے پیچھے بھوگنا سے بہراگ کر لوں. جیسے بھگوان نے گیتا میں کہا ہے اندر سے ویراگ جو من ہنسار ایو تو جنم مرتو درا جاتی دکھ دوستان درشنم. تیل میں جائے آٹھ لاکھ کلو گئے اندر سے وہی رات اندروں کے جو بھوگ ہے ان کے بیچ سے وہاں بہراگ کرنا چاہیے. اس سے پرماتما کے بیچ کا جان ہوتا ہے आत्मा का कल्याण होता है और अहंकारी होते और अहंकार के रहित होना चाहिए और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख रूप दोष का दर्शन करना। जन्मने में बड़ा भारी दुख, मरने में बड़ा भारी दुख, वृद्धावस्था में बड़ा भारी दुख और बीमारी अवस्था में बड़ा भारी दुख। तो जन्म और मरण, जन्मने में, मरने में, जरा में, व्याधि में, इनमें दुख रूप दोष को देखना, इसके देखने से क्या होता है कि वैराग्य उत्पन्न होता है। इसे को बड़ा भारी दुखी दुख है संसार के लिए, तो दुख में वैराग होता है, सुख में तो है राग और दुख में वैराग। दूसरी बात यह है, सुख को देखकर दोष को देखकर दुख दोष अनुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के वहां दुख भी देख रहा थी, दोष भी देख रहा थी, इनके वहां दोष ही दोष भरे हुए हैं। इस प्रकार के देख रहे थे कि चित्ते में वैराग होता है। ऐसा पीड़न विष्णु में उत्तर दार क्रिया दिशु, उत्तर स्त्री ग्रह और आदि से तुम जो की रुपया है, मकान है, इन सब के बीच के वहां, इन सब के वहां भी आसक्ति का त्याग करना चाहिए और ममता का त्याग करना चाहिए। अशक्ति अनविष्टों में पुत्र गार गृह आदि, पुत्र गार और गृह आदि में, पुत्र अस्त्री घर रुपया मकान आदि में अशक्ति को अभाव, अनविष्टों माने समझो कि वह जो ममता है, विशेष एक प्रकार अपनता है, इसको अभाव, क्योंकि ये सभी एक प्रकार कपड़े लिए खतरे की चीज है और परमात्मा के वहां प्रेम बढ़ाना चाहिए। संसार से तो प्रेम हटाओ और परमात्मा में प्रेम कर लो, तो संसार में प्रेम हटाने को नाम ही वैराग है। तो संसार से वैराग कर लो, वैराग कैसे हुए, यह संसार नाशवान है और दुख रूप, इस प्रकार इसमें निश्चय होने से वैराग हुए और वैराग सभी साधनों के बीच के वहां सहायक है, भक्ति के साधन में, ज्ञान के साधन में, कर्म योग के साधन में, अष्टांग योग के साधन में, ध्यान योग के साधन में, जितने जो परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताए हैं उन सब में वैराग की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए एक प्रकार से हर भक्ति से मैं वैराग की भावना करनी चाहिए। वैरागवान पुरुषों को संग करना से वैराग होता है और वैराग की भावना करना से वैराग उत्पन्न होता है। वैराग विषय पुस्तकों को पढ़ने से वैराग होता है और वैराग की बातें जो है वो बांटने से सुनने से भी वैराग हुए और हृदय के वहां वैराग को भाव लाने से भी वैराग बढ़े। और वैराग जो है तो हरेक साधन में बड़ी भारी मदद करता है। बात इतनी करनी है कि हम लोगों का परमात्मा की तरफ तो वैराग है और संसार की मां प्रेम है, तो संसार में तो वैराग करना और भगवान के मां प्रेम करना बिल्कुल बहुत उल्टी बात है। तो हर एक माता बहन और भाइयों को हर वक्त यही ख्याल रखना चाहिए कि अपने सच्ची वृत्तियां जो है तो अपने संसार से वैराग करके उपरम हो गए, यानी अपनी वृत्तियों को अपने उन्नत करें। और मनुष्य को शरीर पाकर के यदि हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो होना ही नहीं है। ये बात एकदम निश्चित है कि मनुष्य इतनी योनि के बीच के वहां किसी भी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन ही नहीं सकता। तो भारी से भी भारी अपने आपत्ति आ जावे या कोई काम आगे प्राप्त हो जावे तो उसको छोड़ करके और परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते ही होती है, क्योंकि यो असली काम है। स्वास्थ्य लाख काम छोड़ करके और यो काम प्रथम करना चाहिए, नहीं तो आगे जा करके घोर पश्चाताप करना पड़े और उस पश्चाताप के करने पर कोई लाभ नहीं हो स्वाक्लेश के। ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो उससे लाभ उठाना चाहिए। जो हम लोगों को विवेक और वैराग जो भगवान का दिया हुआ प्राप्त है और उसका हम उपयोग ठीक नहीं कर रहे हैं, यानी उससे लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को फिर पश्चाताप भी करना पड़ेगा। यदि एक प्रकार से अवश्य भावी हम लोगों को मरना है, शरीर का त्याग करना है, और त्यागने के बाद इस शरीर को तो लोग जला देंगे, भस्मीभूत हो जाएगा, और फिर हमारा इस जन्म में किए हुए जो पाप कर्म उसका दंड हमारे को अनेक योनियों के मां अनेक वर्षों में भोगना पड़ेगा, और वहां जाने से फिर कोई भी उपाय नहीं है जो कि हम अपनी आत्मा को उन्नत बना सकें। इसलिए जब तक मृत्यु दूर है और जब तक काया आरोग्य है, तभी तक जो कुछ करना हो शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए। जब आग लग जाती है घर के वहां और फिर हम कुआं खुदा करके उसको बुझाना चाहे तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि एक प्रकार से हम कुआं खुदाना शुरू करेंगे इतने में तो हमारा घर जो है तो जल भर करके भस्म हो जाएगा, फिर कुएं का पानी क्या काम आएगा। तो इसलिए अपने कितने काम बनाना चाहिए, और ये निश्चित बात है कि हम सब लोगों को जो जितने जन्मे हैं उन सब को मरना ही पड़े, इसमें कोई शंका की बात नहीं, और ये भी हमारे हाथ की बात नहीं है कि हम अभी नए मरे, और ये भी बात है कि हमको पता भी नहीं कब मरेंगे, तो अचानक एक प्रकार से समझो कि मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, तो फिर एक प्रकार से थी उसी क्षण हमारे को यहाँ से चलना पड़ेगा। हमारे जितने जो जरूरी काम है वे सब यहाँ से है, मेरी पुत्र धन रुपया कोई भी चीज हमारे को समझो कि मदद नहीं कर सकेगी, इसलिए पहले से थी उन सब से मोह तोड़ कर देगी और भगवान के वहां प्रेम करना चाहिए। जो भगवान के वहां प्रेम करता है उसके लिए ये लोग और प्रलोक दोनों कल्याणकारक है, और जो संसार के वहां फंस करके अपने जीवन को बिताते हैं उनके लिए ये लोग और प्रलोक भयावह है, यानी यहाँ भी भय वहां भी भय, यहाँ भी दुख और प्रलोक के मन भी तो दुख है। ये बात युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है, आप सब कोई विचार करके देख लें। यदि इसको आप उत्तम समझें श्रेष्ठ समझें तो इसको आप काम में ला सकते हैं, ये कहा जा सकता है। आप देखो ख्याल करके ये रुपयों की फेरी है, रोज समझो कि 10,000 हम कमाते हैं, लाखों रुपये महीने में कमाते हैं, किंतु आज हमारा मरण है तो आज हमारा उन रुपयों के साथ में कोई संबंध नहीं। हम छोड़ करके यहाँ गए तो रुपये छोड़ गए, सोना छोड़ गए तो वही बात है, और पत्थर छोड़ गए तो वही बात है। हमारे लिए न तो कोई लाभ है और न कोई हानि, हानि हमारे लिए यह है कि हम जन्म भर भागते रहे, धन इकट्ठा करते रहे, आखिर के वहां उस धन को छोड़ करके हमको बाध्य होकर के जाना पड़ता है। धन के उपार्जन करने के वहां बड़ा भारी परिश्रम, और फिर उसके खर्च करने में भी इसमें कलेश होता है, और कोई खच्चर ले जाता है या कोई चोरी हो जाती है तो भी कलेश होता है। किसी भी प्रकार से धन के साथ में वियोग होता तब अपने दुख होता है, और उसके त्याग के भी सब दुख होता है, और मरते हैं तब पीछे दुख भरा हुआ है, दुख में और दुख देने वाले पदार्थों में जो हमारी सुख बुद्धि हो रही है, ये हमारे लिए बड़ी भारी घातक है, बड़ी भारी घातक। यह हमारा समझ कर देती थी, अपने विवेक से काम ले लू थी, बुद्धि से काम ले लू थी। मनुष्यों को जो भगवान ने बुद्धि दी है तो उस बुद्धि से इसका काम चल सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धि से हम काम ले रहे हैं तो आगे जाकर हमारी बुद्धि बढ़ सकती है, पर उत्तरोत्तर हमको अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। और एक बात आपको विशेष हिस्ट्री बताई जाती है, ये जितने जो देवी संपदा के जो लक्षण हैं, गीता की 16 अध्याय के वहां आरंभ से 3 श्लोकों के वहां 26 लक्षण बताए, ये सभी एक प्रकार से अमृत के समान है। तो इनको अपने हृदय में धारण कर देते और हम अपना जीवन बिताए तो बहुत शीघ्र उद्धार हो सकता है। तुम तो भगवान कहते हैं कि देवी संपद में मोक्ष आए, या देवी जो संपद है वो मुक्ति के लिए, और महात्मा ने जो मांग पार्थ है देवी प्रकृति मास्त है, भजन तन मनसो ज्ञातवा भूतादि मध्यम। तो एक प्रकार से ऐसी बात कही है कि महात्मा लोग जो है, कैसे महात्मा देवी संपदा वाले, देवी संपदा को आश्रय करने वाली जो महात्मा है, वे भूतों का आदि और अविनाशी मूल को जान करके अनन मन से बचते हैं, यानी नित्य निरंतर हटो बचते हैं। तो एक श्लोक हम धारण कर ले तो हमारे कल्याण में कोई भी चिंता की बात नहीं, एक श्लोक। किंतु हम लोग इस तरफ दृष्टि नहीं डाल करके और भगवान की तरफ और शरीर के आराम की तरफ और रुपयों की तरफ दृष्टि डालते हैं, ये दृष्टि हमारे लिए एक प्रकार से महान घातक है। हम लोगों के मन जो बड़ है वो एक दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। जो कुछ चीज हम लोगों को प्राप्त है और उन सब चीजों को हम भगवान के समर्पण कर दें तो बेड़ा पार, ये भाव की बात है। वास्तव में तो सब चीज भगवान की है ही, भगवान की चीज ही भगवान को समर्पण करनी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि हम अपनी मृत्यु को दूर देख रहे, मृत्यु जब आती है तो पहले खबर नहीं देती, अचानक आकर के मार डालती है। इन सब बातों को सोच करके हर वक्त तैयार रहना चाहिए, अपने परम मित्र भगवान के दरबार में जाने के वास्ते अपने तुम जो कमर कस कर सके और कपड़ा लगता बांध करके जिससे मुसाफिर तैयार रहे, ऐसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मृत्यु और काल आकर के प्राप्त होए तो उनको स्वागत कर लो, जैसे समझो कि हम लोग रेल की सवारी करते हैं, कपड़ा लगता बांध करके और टिकट कटा करके प्रतीक्षा करते हैं कि अभी रेल आवे, अभी रेल आवे, और वो रेल आती है तो सुखदायी प्रतीत होती है और जाने की जल्दी रहती है अपने मित्र के पास में। इसी प्रकार हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। यह मित्र कौन है कि परमात्मा सबके मालिक, और मालिक बोले वही मालिक है, वही सब कुछ है। तो यहाँ एक प्रकार से तैयार रहना क्या है कि मानो हम सब काम कर चुके, ये जो भाव है हर वक्त ये तैयार रहना है। और ख्याल करना चाहिए, देवी सभ्यता के लक्षणों की बात मैंने आपको बताई, इस देवी सभ्यता को हम कठिन मान ले तो हम एक प्रकार से निराश हो जाएंगे, और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाऊं और ये समझे कि ये देवी संपदा जो है ये तो बड़ी उत्तम चीज है, इसको तो अपने आज धारण कर लेना चाहिए। न धारण करने का कोई भी कारण नहीं है और न इसमें कोई आयास है न कोई खर्च है और सब प्रकार के हमारे को सुविधा है। ऐसा समझ करके गीता की 16 अध्याय के 3 श्लोक जो है अक्षर से समझ कर और अपनी आत्मा में धारण कर लेने चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन बनाने के वास्ते अपने उतारू हो जाना चाहिए। इस काम के विषय के वहां कोई बाधा डाले तो चाहे बाप भी क्यों नहीं हो एक प्रकार से परवाह नहीं करेंगे। आप सार किसी देखो थोड़े समय के लिए आपको यह मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसे समय में आपकी आयु को आप कष्ट गुमा दोगे तो आपके लिए महान हानि है। और आश्री संपदा के जो लक्षण है इनका कतई त्याग कर देना चाहिए। जो गीता की 16 अध्याय के वहां छोटे से लोग से लेकर के 21 के श्लोक तक जो इसका विस्तार है कि आसुरों के लक्षण, दैत्यों के लक्षण बताए, राक्षसों के लक्षण बताए, तो उनसे हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए। जो एक प्रकार के थे ये समझ लेता है कि भाई हमारे में तो ये दूर से नहीं हट सकते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आदि इतने मन के वहां प्रवेश हो गए हैं कि वे जल्दी निकलना नहीं चाहते। मान लो वे तो नहीं निकलना चाहते किंतु हम अपने घर के वहां चोर और डाकू तो क्यों बसा रहे, ये तो रुके हैं। हमारा जो असली जो धन है आत्म कल्याण विषय उसको ये लूट लेते हैं तो इनको अपने घर के वहां समझुति बसाना नहीं थी और बस गया है तो इनको एकदम निकाल देना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि इन दुर्गुणों का मैं त्याग नहीं कर सकता। दुर्गुणों के त्याग करने में कोई भी कठिनता नहीं है, हम लोग जो उसको कठिन मान करके कठिन कर दिया है वास्तव में कठिन। आप छड़ करके देखिए जो खराब चीज है वो तो दुख देने वाली अवश्य करके होगी, तो कोई भी मनुष्य संसार के मां दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहते हैं किंतु बिना चाहे भी दुख आकर के प्राप्त हो ही जाता है। अर्थात तो नहीं ये समझना चाहिए कि इस प्रकार से दुख हमारे को भविष्य में नया वेद के लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है कि परम शांति परमानंद परमात्मा की तो प्राप्ति करनी और दुर्गुण और दुराचारों का जो आश्रय संप्रदाय के लक्षण है इनका एकदम विनाश कर डालना, तो ये समझना चाहिए। और मन के वहां बड़ी वीरता शूरता रखनी चाहिए, जबकि भगवान का हमारे सिर के ऊपर हाथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए सिंधु की कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का हमारे सिर पर हाथ है, भगवान का सबके सिर के ऊपर हाथ है। किंतु जो इस बात को मानता है उसको तो प्रत्यक्ष में लाभ मिलता है और जो नहीं मानता है उसको लाभ नहीं मिलता, वो लाभ से वंचित रह जाता है। इसमें अपना लगे ही क्या, हम ये माने कि भगवान का हमारे सिर पर हाथ है और भगवान का अपने सिर पर हाथ देख देख करके हर क्षण क्षण के बीच के वहां अपने हंसता रहे मुग्ध होता रहे। और ये बात खूब हृदय के द्वारा धारण करनी चाहिए। जितने उत्तम गुण है देवी संप्रदाय के लक्षण है उनको अमृत के समान समझ करके अपने सेवन करना चाहिए, पान करना चाहिए। और ये बात हृदय में समझनी चाहिए कि हमारे घर में जब हमारा हृदय हमारा घर है तो किसके बीच के वहां अपने ये कलयुग आदि जो प्रवेश कोई नहीं सकते। तो उत्तम जो गुण है वो हमारे से स्वाभाविक क्यों होने चाहिए, दुर्गुण जो है उनका स्वाभाविक त्याग हो जाए। तो ये बात यदि समझ में आ रहे तो माता और बहनों से भाइयों से प्रार्थना है कि ठीक है यथाशक्ति से भी कोशिश करें परम शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अपना एकदम जीवन लगा देना चाहिए। और सदगुण और दुराचार इनके विनाश के लिए अपना जीवन लगा देना चाहिए। परम शांति स्वरूप परमानंद स्वरूप ज्ञानान घन परमात्मा की प्राप्ति हो जावे तो ये सब दोष तो अपने आप ही सब खत्म हो जावे। ये सूर्य उदय होने से अंधकार अपने आप ही मिट जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से ये सब दोष अपने आप ही मिट जाते हैं। तो इस पर विशेष हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों का खास काम यही है मनुष्य शरीर पाने का, दुर्गुण और दुराचार जो दुख के घर है इनका तो एकदम कतई त्याग, और सदगुण और सदाचार ईश्वर की भक्ति ये सदाई सुख देने वाले हैं। तो इनसे प्रेम करना इनके लिए और दूसरे इनका हमको त्याग करना पड़े तो बेहतर त्याग कर देना चाहिए। चाहे त्रिलोकी का राज भी क्यों नहीं हो उसको भी टुकड़ा देना चाहिए और कमर करके इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये निश्चय करना चाहिए कि इन गुणों का उपार्जन करना कोई भी कठिन बात नहीं है। इस प्रति बड़ी भारी हमारे ऊपर गया है वो ये तो अनायास ही सब बात है तो हो जाएगी। इसमें हमारा लगा विचार और भी एक सिद्धांत की बात है तो जितने जो दुर्गुण है एक प्रकार के और सद्गुण है, सद्गुणों का धारण करना इतना कठिन नहीं है जितना दुर्गुणों का धारण करना कठिन है। ये तो मनुष्य के वहाँ स्वाभाविक क्यों होना चाहिए, जो ब्राह्मणों में तो स्वाभाविक होने की बात भगवान कही है। तमो तम सब स्वतंत्र शांति राज जो निरुद्ध ज्ञान विज्ञान मास्टिक कर्म कर्म स्वभाव जम ये गीता के बीच में अठारहवें अध्याय के वहाँ न्यायिक के श्लोक में बताया है। ब्राह्मणों के मां ये स्वाभाविक ही होनी चाहिए और हम लोगों के लिए क्या है ये सब स्वाभाविक नहीं हो तो उपार्जन करने से अपने प्राप्त हो जाते हैं। एक तो सम माने मन को भस्म करना, एकदम इंद्रियों को भस्म करना और एक तप अपने धर्म के ऊपर डटकर रहना, धर्म के लिए कष्ट का सहन करना और सोचे मन बाहर की पर